नमः राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित मल धामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यौ सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। चारों भाइयों का विवाह हुआ। जनक जी महाराज के मन में अपार आनंद हुआ। सीता जी बार बार राम जी को बड़े प्रेम के द्वारा देख रही है। देखने में तो संकोच है, परंतु अपने मन से भगवान को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। भगवान की बड़ी सुंदर छवि है, श्याम शरीर भगवान का करोड़ों करोड़ों कामदेव को लजाने वाला है। भगवान का जो चरण है एकदम लाल है, इतना सुंदर है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने अपने मन को भंवरा बनाकर वही वही घुमाते हैं, और जगह नहीं, बस चरण ही चरण में रखते हैं। भगवान ने जो पीताम्बर पैर रखा है, वो पीताम्बर इतना सुंदर लगता है जैसे कोई बादल में बिजली चमकती हो। भगवान के कटी सूत्रों में छोटी छोटी घंटियां लगी हुई बहुत सुंदर लगती है। भगवान की भुजाल विशाल है और भगवान के हाथ में जो मुद्रिका है यह तो चित्त को चोरने वाली है। बहुत ये मुद्रिका है ना, कर मुद्रिका चोरी चित्त ले। इस मुद्रिका के ऊपर ही देखो सीता जी ने पहचान लिया था कि ये हनुमान वहीं से आया है। भगवान ने भी इस मुद्रिका को बड़े चाव से, बड़े विश्वास से दिया था कि भाई ये मुद्रिका तुम ले जाके सीता को देना। मुद्रिका दे जाने की जरूरत ही क्या थी, वहां तो संदेशों की बात थी। पर भगवान ने ये मुद्रिका दी। अब कई कहते हैं कि साहब तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों के वेश में राम जी को वन में भेजा था तो ये अंगूठी कहां से आ गई, ये अंगूठी क्यों ले आए। अब ये अंगूठी कैसे लाए क्या लाए भगवान जाने, पर ये जनक जी महाराज की दी हुई एक ऐसी विचित्र अंगूठी थी जिस अंगूठी के द्वारा आफत काल के अंदर ये सहायता करने वाली होगी, ऐसा गुप्त संदेश उनको मिला था राम जी महाराज को। तो ये उस समय की सब बातें इसमें लिखी नहीं जाती। तो राम जी महाराज विदा हुए तब उनके साथ में एक बक्सा था, आभूषणों का बक्सा। उन आभूषणों के बक्सों में सीता जी के आभूषण थे। लेकिन राम जी की सासू जी ने एक बात कही थी, जनक जी ने भी बात कही थी कि ये जो मुद्रिका है ये मुद्रिका आपसे कभी अलग नहीं होनी चाहिए। कितनी भड़क भयंकर आफत हो ये मुद्रिका आप और सीता के पास ही रहनी चाहिए, और के पास मुद्रिका नहीं जानी चाहिए। तब बताओ ये आभूषण लिया नहीं। राम जी के तो कई आभूषण, युवराज थे उनके तो कई आभूषण, मुकुट भी लेना चाहिए था, उनके भुजबंद भी लेने चाहिए थे, उनके कानों के कुंडल भी लेने चाहिए थे, युवराज है वो, लेकिन कोई आभूषण नहीं लिया, एक मुद्रिका ही साथ में लेकर के गए। सीता जी के आभूषण साथ में गए, वशिष्ठ जी की आज्ञा थी। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये जो कैकेयी ने वरदान लिया है केवल राम के लिए है, सीता के लिए नहीं है। सीता जाएगी आभूषणों सहित जाएगी। इसलिए देखो आप सुनेंगे सुंदरकांड में, देखते भी जानते भी है कि चूड़ामणि उतार दी, चूड़ामणि दे दी। चूड़ामणि माने बोरिया, बोरिया ये चूड़ा माने केस, उसकी जो है ये मणि है अर्थात ये बोरिया आगे दे दिया। कि बोरिया ही क्यों दिया जी, सीता जी के हाथ में चूड़ियां थी, सीता जी के भी हाथ में अंगूठी हो सकती है, सीता माता के और भी कई आभूषण है, ये क्यों दिया, बोरिया ही क्यों दिया। बोरिया इसलिए दिया कि आपने अपना हाथ का आभूषण दिया तो मैंने अपना सिर का आभूषण है, अर्थात आपका हाथ यदि मेरे सिर पर है तो ये रावण मेरा कुछ नहीं कर सकता। आपस में इन आभूषणों के द्वारा एक दूसरे के मन के संकेत एक दूसरे के पास पहुंचाए गए। कर मुद्रिका चोरी चित ले, देखो इतने सब आभूषण बताए राम जी के, इतनी शोभा बताई, पर चित्त चोरने की बात तो यही बताई। कर मुद्रिका चोरी चित ले, चित्त को चुरा ले वे ऐसी हाथ की मुद्रिका। और भी भगवान की बड़ी विचित्र शोभा है, पियर ऊपर ना काखा सोती, दऊ आचरण लगे मनि मोती। एक दुपट्टा है, दुपट्टा पीला दुपट्टा, पियर ऊपर ना, ये दुपट्टा दुपट्टे की जो कौर होती है वो मणियों से ऐसी सुंदर गुथा गा करके और ऐसी सुंदर लगी है, वो जनेऊ के समान यू दिख रही है। भगवान के नयन कमल के समान है, कानों में कुंडल बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुख के ऊपर तो सारा सौंदर्य आकर के टिकी गया है, और भगवान के सिर के ऊपर मोर सुहारा है, एक ऐसा करके ऊपर मोर पंख होता है, वो बड़ा सुंदर लगता है। कृष्ण भगवान के तो मोर पंख की बात आती है, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। पर तुलसीदास जी महाराज ने अपने राम जी को भी मोर मुकुट पहना दिया। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोर ही, उस मुकुट के अंदर मोर के मुकुट में इतनी ज्यादा यू मणिया ही मणिया मणिया ही मणिया लगाई गई है, कुछ कह नहीं सकते हैं। राम जी की ये शोभा देख करके वहां जितनी नारियां थी वो सब नारियां, वो देवांगनाएं पूर्व नारी सुर सुंदरी, वहां की नारियां और देवांगनाएं सब तिनका तोड़ने लगा, रही कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर स्वरूप है। और मणि है, बसन है, भूषण है, ये सब ले ले करके राम जी के सामने भी सब आ रही है। देवता लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं, मागद है, सूत है, बंदीजन है, ये बड़े अच्छे सुंदर सुयश गवा रहे हैं। कुह बरी आने कुंवर कुंवरी सुआसनी सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करण मंगल गाय के। अब वहां कुंवर और कुंवरी माने राजकुमार और राजकुमारियों को वहां पर बुला करके बड़े प्रेम के साथ मंगल गान सुनाती है। राम जी महाराज की और सीता जी की शोभा को यदि आज सब सरस्वतियां आकर के कहने लगे तो भी उनके उनके कहने में कमी आएगी, इनकी सुंदरता का वे भी वखान नहीं कर सकती है। जनक जी महाराज का रनिवास हास विलास रस आदि के अंदर डूबा हुआ है। एक बड़ी सुंदर बात, बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि सीता जी है वो अपने हाथ में जो चूड़ियां वगैरह उनमें जो मणि है ना, उस मणि को यूं ही देख रही है, अपनी मणियों को यूं देख रही है, तटस्थ यूं एकदम ध्यानस्थ होकर के। क्यों? निज पानी मणि मऊ देखी अत मूर्ति स्वरूप निधान की। वो हाथ हिलाती नहीं है क्योंकि इस मणि के अंदर राम जी की परछाई पड़ रही है। अभी सीधा तो राम जी को देखे तो अच्छा नहीं लगता, तो अपनी मणि के अंदर राम जी की शोभा देख देख करके बड़ी आनंदित हो रही है। चालती न भुज बल्ली विलोकनी विरह भय बस जान की। वो देखती जरा हाथ हिल गया, हाथ हिलते ही मुझसे राम जी का स्वरूप जो है वो देखने में नहीं आएगा, इसलिए वो अपनी भुज बल्ली को वो न चालती, वो चलाती नहीं है विरह के भय के कारण से। क्या सीता जी ने प्रेम किया है। कौतुक विनोद प्रेम प्रमोद प्रेम न जाय कही जानी अली, बर कुमारी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। वे सखियां ये बड़ा कौतुक करती हुई, हंसी मजाक करती हुई, प्रेम की बातें कहती हुई, अब राम जी सीता जी और ये तीनों भाई और उनकी पत्नियां जनवासे की तरफ जा रही, उनके साथ साथ में वे भी गाती गाती जनवासे की तरफ जा रही है। जो जो लोग देखते हैं उनको तरह तरह से आशीर्वाद देते हैं, आनंद से ये आकाश आशीर्वादों से भर गया। ये चारों जोड़ियां चिरकाल तक रहे, बड़े बड़े योगी लोग सिद्ध लोग मुनीश्वर देवता लोग ये सब देख देख करके खुश हो रहे हैं। देवताओं के द्वारा जगह जगह फूलों की वर्षा होती है और बड़ा आनंद का अनुभव करते हुए आनंद लुटाते हुए दुंदुभियां भी बजा रहे हैं। ऐसे ही देवता लोग आगे बढ़े। सहित बधू टिनी कुंवर सब तब आए पितु पास, अब पिताजी के पास आ गए। अब वहां पर भोजन हो रहा है तो वहां जीवनार हुई, बहुत बढ़िया वहां पर जीवन हुआ। जनक जी महाराज ने सब बरातियों को बुलाया, पावड़े दे दे करके माने पग बता करके पैरों के नीचे वो बिछा करके सबका स्वागत करते हुए ला रहे हैं। वो सबके पैर धोए और अच्छे पीढ़े पर उनको बैठाया। जनक जी महाराज ने दशरथ जी के चरण धोए और फिर भगवान राम जी के चरण धोए। जिस समय राम जी के चरण धोते हैं उस समय दशरथ जी नहीं जनक जी ने जब चरण धोए तब उनके मन में ये भावना बार बार आती है, ओहो भगवान शंकर तो इन चरणों को अपने हृदय में बसाते हैं। ऐसे ध्यान करते करते उनका चरण धोते हैं। तीनों भाइयों का भी चरण धोया। जनक जी महाराज ने सबको बैठाया, अच्छे अच्छे पुरस्कारी करने वालों को बुलाया और वहां पर बहुत बढ़िया भोजन वहां सामने रखे। भोजन में क्या रखा हो, मिठाई में नाम केवल यही दिया। क्या दिया, सूपो धन सुरभि सर्पि सुंदर स्वादु पुनीत छनमौ सबके परुषगे चतुर सुआर विनीत। देखो मिठाई में क्या बता रहे हैं, ये कि दाल है भात है और गाय का घी है। ये नाम तो इतने का ही लिया और के इसके अलावा कितनी मिठाइयां थी, हम कौन नाम बतावे बताओ। तो कौन नाम बताए, तो गोस्वामी जी महाराज आपने चावल का इनका नाम दिया। चावल बहुत मांगलिक होता है, भोजन बनाओ चावल जरूर बनाते हैं, चाहे थोड़े ही बनाओ, क्यों चावल बहुत मांगलिक होता है। और सुर भी सर्पी गाय का दूध गोरस होता है, गोरस ये भी ये बहुत आवश्यक होता है। पवित्र काम के लिए गोरस मांगलिक होता है। तो चावल और गोरस सुपोदन सुरभि सर्पी सर्पी माने घृत सुंदर स्वादु पुनीत ये सब पुरुष ने लगे। और फिर जो है वहां पर तरह तरह के पकवान अमृत के समान मीठे, कहते हम कह नहीं सकते हैं। ऐसे पुरुषगारी करने वाले लोग तत्काल सब पुरुषगारी कर दी। चार प्रकार का भोजन होता है, वो है भक्ष्य भोज्य चोष्य पेय, पीने की चीज है जैसे रायता वगैरह है पीने के योग्य होता है, कहीं चूसने का होता है, कहीं चबाने का होता है, कहीं खाने का होता है। ऐसे चार चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णी न जाई। छह प्रकार के रस वहां पर जब ये पंक्ति लगती है तो वहां स्त्रियां बहुत मीठी मीठी नाम ले लेकर के गालियां निकालती है। थे तो जी मो राम जी बेठा, थे तो राजा दशरथ जीरा बेटा जी, ऐसे नाम ले लेकर के गालियां निकालती है। जय मत दे मधुर धुनी गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। कहते ये ऐसा ओलमा देती है सबके बीच में, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। गोस्वामी जी महाराज कहे समय सुहावनी गारी भी राजा, समय के अंदर किस वस्तु का कैसा आनंद होता है ये देखिए। ये बड़ा अच्छा समय, आनंद का समय होता है। आनंद के समय में जो उपालंब दिया जाता है, गाली दी जाती है, वो चुभने वाली नहीं होती, वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे कोई बीमार आदमी हो और उसको डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो पीड़ा होती है, पर वो पीड़ा नहीं करती है, वो उस इंजेक्शन से कहा इंजेक्शन पैसा दे के इंजेक्शन लगवा लो, पैसा लो और इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगाता है। जेवत दे मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी, समय सुहावनी गारी भी राजा, और हंसत राव सोनी सहित समाजा। दशरथ जी महाराज खूब हंस रहे हैं। इस प्रकार से सबने भोजन किया और भोजन करने के बाद सबको जो है उन्होंने पान वगैरह दिए और सब अपने अपने जन्माष्टमी में चले गए। ऐसे करते करते एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, कई दिन बीत गए। निमिष सरिस दिन जामिनी जाई, कितनी कितनी रातें बीत गई, यू ही हंसी में ठिठोरी में बातें, समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। रोज हमारे दशरथ जी महाराज वहां पर याचकों को बुलावे, खूब दान देवे, ऐसा उनको दान देते देते मन भरता ही नहीं है। एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने क्या नहीं पाया है, देखो अयोध्या का तो राज्य मिला, राम लक्ष्मण जैसे मुझे चार बेटा मिले, जनक जी महाराज जैसे समधी मिले और ऐसी अच्छी हमको पुत्र वधुएं मिली, अब हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सब ब्राह्मणों को बुलाओ और उनको गाय है, वस्त्र है, ये सब आप दिलाओ। तो वशिष्ठ जी महाराज ने वामदेव को बुलाया, नारद जी को बुलाया, वाल्मीकि जी को बुलाया, जामाली को बुलाया, अरे खुद हो गए। वामदेव देव ऋषि, वामदेव और देव ऋषि, वाल्मीकि, जाबाल, चार आए, चार आए। मुनिवर निकरतव कौशिकादि तपसाल, पांचवे आ गए विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी महाराज तो पहले से ही साथ में थे, तो 4 लाख गाय दी, 4 लाख। ये 4 लाख क्यों दी, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे कुछ आ रहे कि खास ये चार ऋषि थे, वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि और जाबाल। वशिष्ठ जी महाराज खुद साथ में थे और विश्वामित्र जी महाराज भी साथ में रहे। इसलिए दान उसी को ही देना चाहिए कि जो अपने ब्राह्मण होते हैं ना, उनको तो देते हैं अलग जगह, लेकिन दान की वृत्ति से दिया जाए वो अलग ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। पर अपने घर के ब्राह्मण होते हैं वो कहते साहब हमको दान नहीं दिया। देखो तुम्हारा तो पहले हिस्सा है, घर के ब्राह्मण को पहले हिस्सा देने के बाद अब जो दान अपरिचित ब्राह्मणों को दिया जाता है, ब्रह्म दान होता है वो अलग से, वो वास्तव में उनको दिया जाता है जिनसे हम कभी सेवा नहीं लेते, जो हमारे घर में कभी कर्मकांड पूजा नहीं करवाते, उनको जो दान दिया जाता है वो बहुत विशुद्ध दान होता है, क्योंकि उस दान में हमारा स्वार्थ नहीं है। अपना जो ब्राह्मण होता है उसको दान देते हैं तो फिर वो जो है उससे हम कितना ही काम भी करवाते हैं, तो वो एक काम के बदले में देना, एक दान की वृत्ति से देना है। चार ही लत समर धेनु मंगाई, काम सुरभि सब शील सुहाई, काम धेनु के समान वो गौवे थी, सब प्रकार से उनको राजा ने दिया और बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए तो जनक जी महाराज के पास में जाते हैं और उनसे विदा मांगते हैं कि महाराज आप हमको जाने दीजिए। पर राखी जनक सहित तो अनुरागा, जनक जी महाराज नहीं नहीं अभी नहीं, आज तो मुहूर्त अच्छा नहीं है, आज तो बार अच्छा नहीं है, बुधवार है, बुधवार को कैसे भेजे जी, और आज तो शनिवार हो, शनिवार को तो घर के बाहर कदम ही नहीं रखना चाहिए, ऐसे कभी क्या बहाना लगा ले, कभी क्या बहाना लगा ले। ये प्रेम के कारण से जनक जी महाराज ये रोके रख रहे उनको। नित नूतन आदर अधिक आई, देखो ज्यादा दिन तक आदमी रहता है तो उसका आदर कम होता है। सास रो, दो दिन रो, वास रो, ये ससुराल में रहना हो दो दिन रहो, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रहो, उसके बाद नहीं रहना चाहिए। तो नित्य अनु अच्छा अपने बच्चों का जो ससुराल होता है उसमें तो खैर बहुत ही कम रहना चाहिए, यदि ज्यादा रहोगे तो आपका आदर कम होगा। पर या जनक जी महाराज कहते हैं नित्य अनु, ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जनक जी के यहाँ नित्य नूतन आदर अधिकारी, उनका तो रोज रोज नए नए ढंग से आदर बढ़ता ही जा रहा था। और नितनव नगर आनंद उछाऊ, और नितनव नगर में आनंद छा रहा है, दशरथ गवन सोहाई न काऊ, कोई नहीं कहता कि अब ये चले जाए तो बड़ा अच्छा है। ऐसे बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत सा समय बीत गया। अब दशरथ जी महाराज अपने ब्राह्मणों से भी कहे, अरे भाई अब अपने भी तो चलना तो है ही, क्या करें, प्रेम की डोरी में बंध गए तो बंध गए साहब, अब इतने दिन हो गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी दोनों ने आपस में विचार किया कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, अपने को तो विदा तो होना ही पड़ेगा। तब जनक जी महाराज के पास गए, जनक जी से कहा, जनक जी आप तो यहाँ जनकपुरी में ही बैठे हो, अपने नगर में बैठे हुए हो, आप विचार को, दशरथ जी भी तो राजा ही है कि राजा है, कितना काम छोड़ के आए, शादी विवाह हो गया, कई दिन रुक गए, अब तो आपको जाने देना चाहिए ना। अब दशरथ के आयुषु देहु, यद्य भी छाड़ी न सकू स देहु, केवल स्नेह की तरफ भी क्यों देखते हो, देखो तो आप उनका राज्य की तरफ भी देखो। और उनके मंत्रियों ने भी कहा, सब लोगों ने कहा, तो कहा अच्छी बात है भाई, आप सबके जज के, चलो भाई कर दो विदा। अब अयोध्या नाथ दशरथ जी महाराज वहां से विदा होने की बात करते हैं, तो जितने मंत्री वगैरह सब है, सबके अंदर प्रेम ही प्रेम छा जाता है। पूर्ववासी लोग माने जनकपुर में रहने वाले लोग सुनते हैं कि अब तो ये बारात जाने वाली है, एक दूसरे से पूछते हैं, क्यों हमने सुना कि दशरथ जी जाने वाले, क्या बात है? हाँ भाई जाना तो पड़ेगा। अरे चले जाएगी क्या? सब बिल खाने, सब बिलक गए। और ये बाराती जो जो तैयारी करते हैं त्यों त्यों सब लोगों के मन उदास होते चले जाते हैं। तरह तरह का भोजन, जिनको हम कह नहीं सकते कितना भोजन बनाया, कितना भोजन साथ में भेजा, पठई जनक अनेक सुसारा, अनेक प्रकार की सामग्रियां साथ में भेज दी, और लाखों लाखों रथ है, और हजारों हजारों लाखों घोड़े हैं, 25,000 रथ है, और जो है कितने हाथी, 10,000 हाथी, मत सहस दस सिंदूर साजे, ऐसे 10,000 हाथी है। इनको देख देख करके दिशाओं के हाथी भी लजा जाए, ऐसे बलवान बलिष्ठ हाथी है। और कितनी गायें हैं और कितनी भैंसे हैं, कोई कहते भैंसे कैसे दी जाए, गाय तो देने की बात है, भैंस कैसे दी? तो यहाँ महिषी का अर्थ है कि जो महिषी का अर्थ तो भैंस ही होता है, पर हर जगह भैंस अर्थ नहीं होता है। भागवत में भी आता है ऐसा कि भगवान कृष्ण है वो बकरियां गाय और भैंस चरण गए, ऐसा शब्द आता है। भैंस को संस्कृत में महिषी बोलते हैं, और महिषी अर्थ क्या होते हैं, महिषी माने भारी, भारी भारी माने गर्भवती गाय। महिषी धेनु वस्तु विधि नाना, यहाँ भैंस न दे करके और गर्भवती गाय उनको दान में दी, जिनके बछड़ा बछड़ी होने वाला है ऐसी गाय दान में दी। दाई जमित न सकई कई दीन विदेय बहोर, जो अवलोकत लोकपति, बड़े बड़े लोकपति देखने लगे कि अरे हमारे पास तो इतनी संपदा नहीं है, ऐसी संपदा तो जनक जी ने केवल दाईजे में दी है, अपने घर जाने कितना कुछ होता होगा। सब समाज अब रवानगी की तरफ चल हो रहा है, बारात की बात सुनकर, जाने की बात सुनकर के ऐसे लोगों का मन है जैसे थोड़े पानी में बहुत सी मछलियां होती है, वो कैसे विकल होती है, पानी तो है थोड़ा लघु पानी, और मछली उसमें यूं तड़पती यूं आती तड़पती तड़पती, ऐसे लोगों का मन हो रहा है। अब सीता जी को रानियां अपनी गोद में लेकर के बड़ा आशीर्वाद देती हुई शिक्षा दे रही है कि बेटा तुम जा रही हो तो देखो तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे पति के हृदय में कभी भी प्रेम की रेखा कम नहीं होनी चाहिए, और अपने सासुओं की और अपने ससुर की सेवा करने में, गुरुजनों की, बड़ों की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं रखनी चाहिए। पति का रुख देख करके ही काम करना चाहिए। बस इतनी हमारी शिक्षा है, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। इतना कई इतना सखी रोने लग गई। सब बहुत सी सखियां सीता जी को चारों तरफ से घेर करके, सखियों ने सीता को कहा, देख सीता अब तुम जा रही हो, जाना तो पड़ेगा ही, पर एक स्त्री का धर्म ऐसा होता है कि जो परिवार के अंदर बहुत बड़ा स्थान रखता है, तुम अपने धर्म के अंदर इतनी निष्णात रहना, इतने कायम रहना, इतने मजबूत रहना कि तुम्हारे से दूसरे लोग शिक्षा लेने लगे। ऐसे भी सखियां भी बोलती बोलती विमल हो जाती है। सखियों को भी यही चाहिए। फिर सीता जी की माँ है और दूसरी जो सीता जी की बहन है उनकी माता है, वो बार बार गोद में ले रही है। सुनैना जी गोद में ले ले करके बहुत प्रेम प्रकट कर रही है। राम जी महाराज भी वहां आ गए। तेई अवसर भाईन सहित राम भानु कुल केत, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेत। अब राम जी महाराज भी वहां पर तीनों भाइयों के साथ पहुंच गए। राम जी महाराज जनवासी से लेकर जब वो मंदिर तक पहुंचे तो लोग उनको खूब निहार रहे थे। कई लोग कहते, अरे ये देखो कल तक तो हमको यहाँ दिख रहे थे, अब देखो आप चले जाएंगे, आज चले जाएंगे, ओ ये जनक जी से विदा मांगने जा रहे हैं, इनको खूब अच्छी तरह से देख लो, संसार में देखने योग्य चीज ये इतनी है, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई देखने लायक नहीं है ऐसा, ये हमारे प्रिय पाहुने हैं, अतिथि हैं, और न जाने कैसा हमने ये पुण्य का काम किया है कि ये हमारे अतिथि बने हैं, देखो हमारे पाहुने बने हैं, ये कोई भगवान की बड़ी कृपा हुई है, विधाता ने कोई हमको ऐसा सौभाग्य दिया है, जैसे कोई मरने वाला हो और उसको कोई अमृत पिला दे, जैसे कोई जन्म जन्म का भूखा हो और उसको कोई कल्प वृक्ष के नीचे लाकर बैठा दे, जैसे कोई नरक की तरफ जाने वाला हो और अकस्मात उसको कोई भगवान की स्मृति करा दे और बैकुंठ चला जाए, ऐसे हमको तो इनके ऐसे कोई जैसे लोमड़ी के भाग का छीका टूटे, ऐसे कोई अपने तो जो है छीका ही टूट गया है, बिल्ली के भाग का छीका बोल दो, लोमड़ी का बोल दो, इनका दर्शन हम कहते ऐसे, इनके लिए हमारा दर्शन कैसे हो सकता था, हमारे तो कोई दर्शन होना संभव ही नहीं है। छीके पर रखी हुई चीज बिल्ली नहीं ले सकती, लोमड़ी वगैरह नहीं ले सकती, उछलती तो है ले नहीं सकती, इधर तो छीका टूटना हो और इधर बिल्ली का लेना हो, ऐसे न जाने क्या कोई प्रभाव हुआ विधाता का, कोई हमको तो इनके दर्शन हो रहे थे तो हो गए। अब निरख ही राम शोभा और धरहू, निजमन फनी मूरति मनि करहू। देखो अपने मन को तो आप सर्प बनाओ, सर्प, और राम जी का जो स्वरूप है उसको मणि बनाओ। मणि और सर्प कितने अच्छे लगते हैं। ऐसे ही अपना मन है, वो मन तभी अच्छा लगता है जब ये मन राम जी का ध्यान करता है, भगवान का ध्यान करता है। लोग कहते हैं मन बड़ा खराब है, अरे मन बड़ा अच्छा है, कि मन तो चलता फिरता है ना, ये अच्छा नहीं, स्थिर नहीं रहता। अरे भगवान के अलग अलग अंगों पर ध्यान करने के कारण से मन इधर उधर जाता हुआ अच्छा ही तो लगेगा। आप चरणों का ध्यान करते मुखारविंद का ध्यान करने लगेंगे, तो चरणों का ध्यान करके मुखारविंद का ध्यान कब करेंगे, जब मन चंचल होगा तभी तो करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। और मन की चंचलता इसलिए बनाई है कि भगवान के विभिन्न अंगों का हम ध्यान कर सके, एक जगह से ध्यान हटे दूसरी जगह चली जाए। देखो कई कई आदमियों को देखा होगा, ये गर्दन होती है पीछे नहीं मुड़ती है, यू नहीं हो सकती, अपने लोग आराम से यू मोड़ लेते उन्हें, वो उनकी गर्दन यू नहीं होती, कितनी तकलीफ होती है, एक जगह रहती है गर्दन, उसमें किसी प्रकार से लोच नहीं आती। ये मन के अंदर एक लोच है, मन की एक इतनी तरलता है कि आप चरणों का ध्यान करते हो तो मस्तक का ध्यान कर लो, मस्तक का ध्यान करते हो तो वक्षस्थल का कर लो, वक्षस्थल का करते हो तो आप हाथ का कर लो, तो ये तो मन की चंचलता बड़ी अच्छी है। यदि मन एक जगह ही रहता तो आप भगवान के चरणों के बाद मस्तक तक जाते ही नहीं, मस्तक से चरणों तक आते ही नहीं। तो निज मन फनी मूर्ति मनि करहु, अपने मन को तो आप सर्प बनाओ और भगवान की मूर्ति को आप मणि बनाओ, यू सर्प यू मणि बन, कितना अच्छा लगता है। मणिधर सर्प आए तो भाई मणिधर सर्प की बड़ी महिमा होती है। मणिधर सर्प होता है, एक विषधर सर्प होता है, उसके अंदर जहर होता है। जहर वाली सर्प तो बहुत मिलते हैं, मणि वाला सर्प कहाँ मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो मणि वाला सर्प होता है वो बांधता नहीं है। ऐसे ही जिस मन के अंदर भोगों को लेकर चंचलता होती है ना, वो मन है वो विषधर सर्प है। तन बम्बी मन विषधर कहिए, कहते हैं शरीर तो है एक बिल पर इसमें मन है ये सर्प है, जहर से भरा हुआ, भोगों की इच्छा होती है। और वो मन ये सर्प के समान जिसमें भगवान की भक्ति रूपी मणि होती है, भगवान का ध्यान होता है, वो देखो मणि वाले सर्प के अंदर जहर नहीं होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा शुभ होता है, उसके दर्शन भी हो जाते हैं तो बड़ा बहुत मांगलिक होता है वो। तो कहते हैं कि निरख राम शोभा उर धरहु, निज मनि फनी मूर्त मनि करहु। ऐसे लोग सब राम जी के दर्शन के लिए उतावले हो रहे हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो तो सागर के समान है और बाकी ये सब चंद्रमा के समान है। वो चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे सारा रनिवास राम जी के दर्शन के लिए हर्ष के होके वो हो गया, ओ राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। सारे रनिवास के लोग दौड़े दौड़े आए। अब देखो यहाँ बहुत सी मर्यादाएं खत्म होती है। जो ही राम जी महाराज आए तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलगा, प्रेम विवश, प्रेम के अंदर उनके चरणों में जाकर के गिरती, बड़ी माताएं भी चरणों में गिरती है। अब कई लोग कहेंगे कि ये क्या बात है भाई, चरणों में गिरने की क्या बात है, प्रेम विवश, ये प्रेम का राज्य है भाई, इसके अंदर लौकिक मर्यादाएं नहीं चलती है। साफ कह दिया गोस्वामी जी ने, रही न लाज, किसी के मन में ये लाज नहीं है कि हम बड़ी है, उम्र में भी बड़ी है, पद में भी बड़ी है, हम कैसे पैरों में लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। रही न लाज प्रीति उरछाई, सहज सदैव बरनी की भी जाई। ऐसे जब ये सब लोग आए तो उस समय में वहां राम जी महाराज आके खड़े रहे, बोले राम सो अवसर जानी, शील सने सकुच में मानी। राम जी महाराज ने बड़े प्रेम और संकोच के साथ सासुओं के सामने सबके सामने बात कही कि राव अवधपुर चैत सिधाए, विदा हो नाम यहाँ पठाए, मात मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी कर्म नितने हो। हे माताओं, हम आपके बालक हैं, आप बड़े प्रसन्न मन से हमको आशीर्वाद दीजिए। अयोध्या पति श्री दशरथ जी महाराज अब अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, हम आप लोगों से आज्ञा लेने के लिए, विदा होने के लिए आपके पास आए हैं और हमको यहाँ दशरथ जी ने भेजा भी है। ऐसा विनय, ऐसा स्नेह, ऐसी पवित्र वाणी सुने तो सारा रनिवास रो पड़ा है, इतना प्रेम इनका। हृदय आगा आने उस समय में हृदय लगा, एक कुंवारी समलेनी सीता जी को जाकर सुनैना जी ने अपने छाती से लगा लिया, सुनैना जी रोने ही लग गई और राम जी के हाथों में सौंपती हुई कहने लगी, बलि जाऊं तात सुजान तुमको विदित गति सब की है। हे राम, आप तो सबके हृदय की बात जानने वाले हो, घट घट के आप ज्ञाता हो, बस हम तो आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि ये परिवार पुरजन मोही राजहि प्राण प्रिय सी जानिबी, तुलसी सील सनेव लखिनी किंग करी करी मानिबी। ये जो सीता जी है जिसको हमने बड़े प्यार से यहाँ पाला है और बड़े इसको स्नेह से हमने रखा है, तो आप इसको अपनी दासी बांध करके अपने यहाँ इसको रखिएगा और बड़े स्नेह आप देते रहिएगा, गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। आप तो सब कामनाओं से परिपूर्ण है, सबके आप शिरोमणि है, सबके दोषों को आप समाप्त करने वाले हैं, आप करुणा यतन है और जनगण गो गाहक और आप भक्तजन के गुणों को स्वीकार करने वाले हैं, इसलिए आप कृपा करके इसके सब अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा कहकर के सुनैना जी राम जी के चरणों में गिर गई। प्रेम पंक जनु गिरा समानी, तो वही चरणों में प्रणाम किया तो उस समय में ऐसा लगा कि जैसे प्रेम के कीचड़ में वाणी फंस गई हो, प्रेम रूपी कीचड़ है उसमें वाणी फंस गई, अपना वचन फंस गया, अब वो वचन निकले कैसे, मानो कुछ बोला नहीं गया उनसे। बड़ी स्नेह की बात सुनी, राम जी कुछ नहीं बोले। राम जी क्या बोले हम, राम जी महाराज तो हाथ जोड़ करके विदा मांगते हैं और फिर सबको बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से प्रणाम करते हैं। अब देखो वही रानिया जिन राम जी के चरणों में भी पड़ती है और वही रानिया राम जी को आशीर्वाद भी देती है। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई भाई सहित चले रघुराई, राम जी महाराज भाइयों सहित रवाना हुए। वहां सीता जी को बार बार गोद में लेते हैं और माताएं उनको छोड़ना ही नहीं चाहती है। जैसे बाल मत्स जीव धेनु लवाई, जैसे कोई गाय है वो अपने बछड़े को छोड़ना नहीं चाहे, सद्योजात बछड़ा है उसको चाटती रहती है, छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे न तो मां न सखियां कोई सीता जी को छोड़ना ही नहीं चाहती है, सब नर नारी प्रेम के वशीभूत हो गए। वास्तव में आज ये विदेह नगर तो आज ही विदेह नगर हुआ है जहां करुणा का और विरह का निवास हो गया, सब रो रही है। अरे नर नारी की बात छोड़ो, सीता जी ने जिन तोते को अपने पिंजरे में रखा है, मैना को रखा है, सोने के बड़े सुंदर वो पिंजरे, उन पिंजरों के अंदर तोता मैना भी सीता जी के लिए विलाप कर रही है। सब भये विकल खग मृग ऐ भांति, जब पशुओं की पक्षियों की ये दशा है तो मनुष्यों की हम कैसे दशा कह सकते हैं। जनक जी महाराज भी आ गए वहां, सबको रोते बिलकते देखा तो उनकी आंखों में भी पानी आ गया। उनके अंदर रहने वाला जो धैर्य था वो धैर्य भाग गया। जनक जी तो बड़े वैराग्यवान कहलाते थे, बड़े वैराग्य थे, संसार के विषयों से कोई मतलब ही नहीं था, पर आज सीता को विदा करते हुए उनकी ज्ञान की मर्यादा भी नष्ट हो गई। मामूली मर्यादा नहीं थी, महामर्जाद ज्ञान की बहुत बड़ी मर्यादा थी। कैसे जनक जी महाराज थे, वो कितनी कितनी सिद्धियां वे कर लेते थे, कितना कितना वो यामिनी है, डाकिनी है, पिशाचिनी है, उनको एक मंत्र से सब बस में कर लेते थे। और भी अंतर ज्ञान भी बड़ा विलक्षण था, जिनके मन में कभी कोई विषय का प्रभाव ही नहीं पड़ता था, वो आग के ऊपर हाथ रख दो और स्त्री पर हाथ रख दो, कंधे पर हाथ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे जनक जी महाराज वे भी आज टप 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 आंसू बहाने लग गए। मंत्री लोग आकर के जनक जी को समझाते हैं कि महाराज आपकी आंखों में तो कभी आंसू आए ही नहीं, आज ही क्या हो रहा है। देखो बेटी होती है वो तो दूसरे के लिए ही होती है, कन्यादान क्यों श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कन्या जिस घर में जन्म लेती है, जिस घर में पलती है पोसती है, उस घर के काम में आकर दूसरे घर में जाकर सेवा शुश्रूषा करती है, तो ये दूसरे के लिए ही होती है। कितना बड़ा पुण्य होता है कन्यादान का, वो आपने प्राप्त किया है, इसलिए आपको शोक करने की, चिंता करने की, इससे विदा होने की जरूरत, इससे विदाई के दुख की जरूरत ही नहीं है। जनक जी महाराज को खूब जो है धैर्य दिलाते हैं। वे भी बार बार सुता उर लाई, बार बार अपने पुत्री को छाती से लगाते हैं और एक पालकी के अंदर बैठाकर उसको विदा करते हैं। दासी दास बहुत सी दिए सामान दिया, सीता जी है वो भी अपने माँ को, अपने पिता को, अपने सहेलियों को, अपने सब जो है साथियों को देख करके वो भी बहुत विमल हो जाती है। सीता जी अपने पालकी के अंदर से सबको देखती है और पिता बार बार झांक झांक करके सीता जी को देखते हैं। दशरथ जी महाराज के वहां पर बहुत सा सामान इकट्ठा हुआ, अब वो सब वहां से रवाना होते हैं। बासन बसन बाजी गज दीने, दशरथ जी महाराज मना करते हैं, वो बार बार देते हैं। फिर जो है बहुत दूर तक साथ साथ चलते हैं विदा कराने के लिए। दशरथ जी महाराज बार बार कहते हैं, देखो अब बहुत दूर हो गए, अब रहने दीजिए, अब रहने दीजिए। लेकिन जनक जी महाराज मानते ही नहीं है। जनक जी महाराज साथ में चलते हैं। अब जब दशरथ जी ने देखा ये तो चलते ही रहेंगे, तो दशरथ जी अपने रथ से उतर गए और राव बहोरी उतरी भय ठाडे, अपने रथ के वही खड़े हो गए। साहब अब मम्मी अब खड़े हैं, अब आप पधारो तब जाएंगे। जनक जी महाराज कहते हैं कि हे दशरथ जी महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। आज संसार में मुझे कोई पूछेगा कि आपके बच्चों का विवाह कहाँ हुआ है, तो हम कहेंगे अरे हमारी कन्याओं का विवाह, चारों कन्याओं का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज के पुत्रों के साथ हुआ है। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, हमारा कितना सम्मान आपके द्वारा हुआ है, इसलिए हम आपके प्रेम को कभी भूल नहीं सकते हैं। जनक जी महाराज ने ऋषि मुनियों को भी प्रणाम किया। सबको प्रणाम करने के बाद अब राम जी के पास आए। अब जनक जी का आंतरिक ज्ञान खुलता है। वो आकर के जनक जी महाराज जोरी पंख रूह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु पाए, हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे, हे राम मैं भीतर के नेत्रों से आपको जानता हूं, यूं तो आप हमारे जमाई हो, परंतु ये एक आपकी लीला है। लीला आप शंकर भगवान के मद रूपी सरोवर के अंदर रहने वाले हंस हो, मैं आपकी किन शब्दों में प्रशंसा करूं, आपके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बड़े बड़े योगी लोग योग करते हैं, आप व्यापक हो, ब्रह्म हो, अलक्ष्य हो, अविनाशी हो, चिदानंद हो, मन समेत जय जानन बानी, मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, वाणी है, ये आप तक जा नहीं सकती है। आपकी महिमा को वेद भी नहीं कह सकते हैं। आप सदा एक रस रहने वाले हैं, न तो आपका जन्म हुआ है और न ही आपका कहीं अभाव होने वाला है, आप सदा एक रस रहने वाले हो। आप जो इस समय हम लोगों के नेत्रों के विषय बने हुए हो और हम लोगों को आप आनंद दे रहे हो, ये भी एक रहस्य की बात है, आपकी कृपा ही है, ये आप लीला कर रहे हो। आपने भी महाराज मेरे यहां जवाई होकर मुझे बहुत बड़ी बधाई दी है। संसार में ये चीजें, एक तो आपका गुण और एक ये मेरी बधाई, ये दोनों कभी नष्ट होने वाली नहीं है। हो ही सहसद सारद शीशा, यदि 100,000 सरस्वती और 100,000 सरस्वती 10,000 शेष, ये यदि करोड़ों करोड़ों कल्पों तक आपकी महिमा गाए, तो भी आपकी महिमा का कोई पार नहीं है। मोर भाग्य और राउर गुण गाथा, आपका तो गुण और मेरा भाग्य, ये दोनों महाराज कोई कह नहीं सकता है। आप मेरे जमाई हुए महाराज, कोई कम बात है क्या? अब मैं एक बात आपसे बोलता हूं, बहुत ध्यान देने की है। सारे रामायण में ऐसी बात नहीं आई। बड़े बड़े भक्त मिलेंगे भगवान को, वो भी ऐसी बात नहीं कहेंगे। बस इतनी बढ़िया बात कही है, साधक को बल मिले जैसी बात है। जनक जी कहते हैं, मैं कछु कहूं एक बल मोरे, मेरे पास एक ताकत है महाराज। ये क्या? मेरे पास आपके एक स्वभाव की ताकत मैंने पकड़ ली कि आप थोड़े से प्रेम के अंदर राजी हो जाते हो। तुम रीझो सने सुठी थोरे, थोड़ा सा प्रेम हो तो आप उसमें प्रसन्न हो जाते हो। ये मेरे पास बल है महाराज, और कोई साधन का बल नहीं। और कोई मेरे पास ज्ञान का बल नहीं, एक ही बल है, एक बल। वो एक बल क्या है, आप थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हो। तो अब कोई कहे कि हम तो थोड़ा सा प्रेम कर लेंगे, इतनी शर्त क्यों लगाते हैं संत महात्मा कि ऐसा प्रेम होना चाहिए, सर्वांश में प्रेम होना चाहिए। नहीं नहीं, प्रेम करने वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी दृष्टि में कभी नहीं मानते कि हमारा खूब प्रेम हो गया, भगवान में हमारा खूब प्रेम है। कई लोग कहते हैं हम खूब सत्संग करते हैं, खूब नाम लेते हैं, खूब चिंतन करते हैं, खूब सत्संग में समय लगाते हैं, भगवान में समय लगाते हैं, हमारे ये काम क्यों नहीं हुआ। तो ये खूब लगाते हैं, ये जो मन में भाव आया है यही सबसे बड़ी कमी है। काश तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम खूब रुपया कमाते हैं, हम खूब इज्जत बढ़ाई प्रतिष्ठा कमाते हैं। अब रहने दो, अब बहुत इज्जत हो गई, अब खूब प्रतिष्ठा हो गई, खूब धन हो गया, अब हमको नहीं कमाना है, खूब हो गया अब, ऐसा कोई नहीं बोलता। और भगवान की तरफ चलते हैं उसमें, साहब हम इतना करते हैं, हम इतना करते हैं, हम इतना कर लिया, खूब भजन में रात दिन लगे हुए हैं महाराज जी, तो रात दिन भजन करते हैं। तो जो अपने द्वारा किए हुए भजन साधन को खूब मानता है वो वास्तव में भजन साधन किया ही नहीं है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। और जो खूब करते हुए थोड़ा मानता है, ये भगवान का भजन करने वाला है। तो जनक जी महाराज कहते हैं कि जो अपने भजन में ये मानता है कि मैंने तो बहुत थोड़ा भजन किया, तो वो उस बहुत जल्दी आप प्रसन्न होते हो। इसलिए महाराज मैं तो बार बार आपसे हाथ जोड़ करके विनय मांगता हूं, विनय करते हुए ये मानता हूं कि आपके चरणों को छोड़ करके मेरा मन और कहीं न जाए, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। राम जी महाराज कुछ बोले नहीं जनक जी से, हम बोलना चाहिए। राम जी महाराज क्यों नहीं बोले, इनका नहीं बोलना ही सब कुछ बोलना है। देखो कभी कभी आदमी कुछ नहीं बोल करके सब बात बोल देता है। घर में कोई आदमी बड़ा बैठा है और बच्चों में इनमें कोई बात होगी, घरवाले देखता रहता कुछ नहीं बोलता, अरे देख चुप चुप चुप, अपने अपने आप सब चुप हो जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलता, उसमें सब कुछ बोल देता है। वो यही तो कहता कि भाई क्यों करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, अपने आप ही समझ जाते हैं। तो राम जी महाराज हैं, सुनि बर वचन प्रेम जन पोषे पूरन काम राम परितोषे। राम जी को बहुत अच्छे लगे ये वचन, ये अच्छा लग गया ना उनको, बस एक सारा काम हो गया। राम जी महाराज ने बड़े विनय के साथ अपने ससुर जी का सम्मान किया, जैसे वे दशरथ जी का करते थे, विश्वामित्र जी का करते थे, वशिष्ठ जी का करते थे, इस प्रकार से उनका सम्मान किया। फिर जनक जी महाराज तीनों भाइयों से मिले और जनक जी महाराज वहां से विदा हो गए। विदा होकर के वो तो जनकपुरी की तरफ आए और इधर जो है ये सेना, ये बारात पूरी की पूरी दशरथ जी महाराज के साथ अयोध्या की तरफ चली जा रही है। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम
सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 सीताराम राम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
सियावर राम चंद्र की
जय
घोर मुकुटवंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय जय जय